इंदर अपनी बहन से मिलने उसके घर गया था। वो चुपचाप लॉन में बैठी हुई थी। वो विक्रांत की वजह से परेशान थी, क्योंकि अब वो साफ साफ मान चुका था कि उसी ने जेसिका के भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवाया था। वो अपने पछतावे में डूबी हुई थी। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इंदर उसके पास पहुंचा था। जेसिका को पता ही नहीं चला कि वो कब आ गया। उसे इस तरह बैठे देखकर इंदर ने पूछा। बस ऐसे ही, जेसिका ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। अब ऑफिस जाना, तुम जानती हो मैं बंद कर चुकी हूं। इंदर के हाथ में एक फाइल थी जो उसने जेसिका को पकड़ा दी। जगत भाई ने आपके नाम 5% शेयर किए थे, उसी की फाइल है। आर्यन ने दी है मुझे। तुम जब चाहो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। इंदर चाहता था कि उसकी बहन का मूड ठीक हो जाए। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन का मूड इतना खराब क्यों है। उसे लग रहा था कि शायद कंपनी छोड़ने की वजह से ऐसा हो गया है। तभी विक्रांत वहां आ जाता है। कैसे हो इंदर? विक्रांत ने कहा। मैं तो ठीक हूं, मगर लगता है जेसिका का मूड ज्यादा ही खराब है, इंदर ने कहा। बस ऐसे ही उदास है। जय की कस्टडी हमारे हाथ से चली गई, कंपनी चली गई, विक्रांत ने कहा। मगर अब कंपनी वापस आ सकती है, इंदर बोला। वो कैसे? विक्रांत ने पूछा। जब तुम्हारे भाई ने जेसिका के नाम 5% शेयर किए थे, तो इसलिए वो ऑफिस आ सकती है, इंदर ने कहा। मुझे तो ये अच्छी बात लगती है, मैं चलता हूं, कहकर इंदर वहां से चला गया। वो विक्रांत से बात नहीं करना चाहता था। इंदर के जाने के बाद विक्रांत ने जेसिका की तरफ देखा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विक्रांत ने कहा। मगर क्यों? मैं जाऊंगी, मेरे पास शेयर हैं कंपनी के, जेसिका बोली। तुम कहीं नहीं जाओगी, जहां भी तुम जाओगी मेरे साथ जाओगी, वरना कहीं नहीं, विक्रांत ने कहा। कारण तुम अच्छे से जानती हो। जब तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो और मुझे ही कसूरवार मान रही हो, तो तुम्हें इसी घर में रहना है, इसी घर की चारदीवारी में। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी? ये कहकर विक्रांत वहां से चला गया। जेसिका वहीं सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो विक्रांत को पहचान ही नहीं पा रही थी। विक्रांत ने जब से कहा था कि उसी ने जाकर अनन्या का एक्सीडेंट करवाया है, उसी वक्त से घर पर पूरी सिक्योरिटी थी। जेसिका को साफ कह दिया गया था कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती। न्यारा की फैमिली चाहती थी कि अब वो शादी करके सेटल हो जाए, इसी वजह से उसकी माँ का फोन आया था। तुम्हें कब से कॉल कर रही हूं, फोन क्यों नहीं उठा रही? माँ की आवाज में साफ नाराजगी थी। न्यारा ने फोन देखते ही मैसेज भेज दिया। मैं ऑफिस में हूं, काम होता है, कुछ ही देर में माँ का जवाब आ गया। देखो, मुझे तुमसे ज्यादा बातें नहीं करनी है, न्यारा ने फोन कान से लगाया। हाँ माँ, बोलिए। तुम्हें याद है हमारे पड़ोस में जो मिस्टर शर्मा रहते थे, उनके बेटे रोहित शर्मा? माँ ने कहा। न्यारा का माथा ठनका। उसका दिमाग पहले ही खराब था। ऑफिस में ज्ञान की डांट अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी, और अब माँ की ये बातें। हाँ याद है, उसने बेसब्री से कहा। लेकिन वो क्यों? वो तुम्हारे शहर आ रहा है, तुम उससे मिल लेना, माँ ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। किस लिए? न्यारा ने झुंझलाकर पूछा। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो शर्मा फैमिली चाहती है कि तुम्हारी और रोहित की शादी हो जाए, माँ ने पूरे इत्मीनान से कहा, जैसे ये सबसे नॉर्मल बात हो। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, न्यारा की आवाज में झल्लाहट साफ थी। मैं कौन सी अभी शादी करा रही हूं, माँ ने गुस्से में कहा। एक बार मिलने से क्या चला जाता है? न्यारा ने गहरी सांस ली। माम, बचपन की बात और थी, अब सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माँ ने चिढ़कर कहा। बचपन में तो तुम दोनों अच्छे दोस्त थे, न्यारा समझ चुकी थी। बहस का कोई फायदा नहीं, ठीक है, उसने थके हुए लहजे में कहा। कोई बात नहीं, मैं मिल लूंगी। और इससे पहले कि माँ कुछ और कहती, न्यारा ने कॉल खत्म कर दी। फोन हाथ में लिए वो कुछ सेकंड तक चुपचाप बैठी रही। ऑफिस की टेंशन, ज्ञानपुर की डांट और अब ये शादी की बातें, उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी खुद जी रही है या सबके फैसलों के बीच बस खिसटती चली जा रही है। ज्ञान अपने केबिन से बाहर निकल ही रहा था, तभी न्यारा की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो फोन पर थी। ठीक है माँ, मिल लूंगी, न्यारा ने कहा था। हाँ, शादी की बात बाद में देखेंगे, ज्ञान के कदम वहीं रुक गए। शादी, मिलना। वो अनजाने में ही दीवार के पास खड़ा हो गया। न्यारा उसे नहीं देख पाई, वो कॉल खत्म कर चुकी थी और गहरी सांस ले रही थी, जैसे किसी बोझ से अभी अभी बाहर आई हो। ज्ञान का सीना अचानक भारी हो गया। उसने पूरा संवाद नहीं सुना था, लेकिन इतना काफी था। कोई लड़का, मुलाकात, शादी के लिए। उसके दिमाग में अजीब सी हलचल मच गई। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इतनी नहीं कि वो खुद को समझा सके। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, वही ठंडा
प्रोफेशनल एक्सप्रेशन। सब ठीक है, ज्ञान ने सामान्य लहजे में पूछा। न्यारा चौंक गई। हाँ सब ठीक है, उसने जल्दी से कहा फोन को बैग में डालते हुए। ज्ञान ने सिर हिला दिया। वो कुछ कह सकता था, पूछ सकता था, लेकिन नहीं पूछा, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे तकलीफ किस बात की हो रही है। वो ये हक नहीं जता सकता था, ना नाम दे सकता था उस एहसास को। मीटिंग 5 मिनट में है, इतना कहकर ज्ञान पलट गया। पीछे रह गई न्यारा और आगे बढ़ गया ज्ञान, लेकिन उसके कदम भारी थे। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो किसी और से मिलने जा रही है शादी के लिए, और यह एहसास उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। न्यारा तय समय पर जी रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना था, सिंपल लेकिन उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से परफेक्ट। मन में हल्की सी झुंझलाहट थी, पर चेहरे पर वही संभली हुई मुस्कान। उसे ये नहीं पता था कि उसी रेस्टोरेंट में उसी वक्त ज्ञान की एक क्लाइंट मीटिंग चल रही थी। ज्ञान रेस्टोरेंट के अंदर वाली साइड बैठा था, सामने क्लाइंट बोल रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार इधर उधर जा रही थी। तभी एंट्रेंस की तरफ उसकी नजर पड़ी और वो ठिठक गया। न्यारा अंदर आ चुकी थी, उसके साथ एक लड़का था, लंबा, कॉन्फिडेंट, अच्छे कपड़ों में। ज्ञान को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा, यही है वो, रोहित। उसकी उंगलियां अनजाने में टेबल पर जकड़ गईं। क्लाइंट की आवाज बैकग्राउंड में धुंधली पड़ने लगी। सर क्या हम इस पॉइंट पर? क्लाइंट ने कहा। हाँ हाँ कंटिन्यू, ज्ञान ने बिना देखे जवाब दिया। न्यारा और रोहित सामने वाली टेबल पर बैठ गए थे, पूरी तरह उसकी नजर के सामने। रोहित झुककर बोला, मीनू वाओ तुम बिल्कुल नहीं बदली। न्यारा पहले तो चौंकी, फिर हंस पड़ी। रोहित, ये नाम तो भूल ही गई थी मैं। उसकी हंसी, वही खुली बेफिक्र हंसी। ज्ञान की आंखें वहीं टिक गईं। रोहित आराम से बातें कर रहा था, बचपन की बातें, कॉलोनी की शरारतें, स्कूल के किस्से, और न्यारा वो सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी, बीच बीच में हंस रही थी। याद है तुम मुझे हमेशा डांटती थी, रोहित ने चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत परेशान करते थे। न्यारा ने हंसते हुए जवाब दिया। अब भी करती हो क्या? रोहित ने आंख मारते हुए पूछा। न्यारा ने हल्का सा कंधे उचकाया। डिपेंड करता है सामने वाला कितना परेशान करता है। दोनों फिर हंस पड़े। ज्ञान का जबड़ा सख्त हो गया, वो ये सब देख रहा था, न्यारा का इतना फ्री होना, इतना कंफर्टेबल होना, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मीटिंग चल रही थी लेकिन उसका दिमाग वहां नहीं था। सर डील क्लोज कर दें? क्लाइंट ने पूछा। ज्ञान की नजर अब भी न्यारा पर थी। हाँ ड्राफ्ट भेज दीजिए, उसने रूखेपन से कहा। उसी पल न्यारा की नजर उठी और उनकी आंखें मिल गईं। एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड। न्यारा की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसे अब महसूस हुआ ज्ञान यहां है और वो सब देख चुका है। ज्ञान ने नजर हटा ली, जैसे कुछ था ही नहीं। न्यारा का दिल हल्का सा धड़क गया। वो फिर रोहित की तरफ मुड़ी, लेकिन अब उसकी हंसी पहले जैसी नहीं थी। रोहित ने नोटिस किया। क्या हुआ मीनू? कुछ नहीं, न्यारा ने कहा, लेकिन उसकी आंखें फिर से अनजाने में उसी तरफ चली गईं।
ज्ञान अब खड़ा हो चुका था, क्लाइंट से हाथ मिलाया, बिल साइन किया और जाते जाते एक बार फिर न्यारा की टेबल की तरफ देखा।